Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और आप एक्सपर्ट आदमी के पास ले जाओ तो बोलेगा इसको क्या करो, डिलीट मारो बोलता है वो, डिलीट मारो. आप डिलीट नहीं मारोगे तो उसमें स्पेस नहीं है, वो कंजेस्टेड हो गया है, तो हम डिलीट कर देते हैं. ऐसे हमारा जो दिमाग है ना, इसके अंदर बहुत सारी स्मृतियां एक साथ पैदा हो. अरे कम से कम पहले जन्म की तो बात ही छोड़ो, इसी जन्म की, और इसी जन्म की नहीं 10-20 दिन की समझ लीजिए, 10-20 दिन की, या तो मान लीजिए 4-5 दिन पहले घटी हुई घटना, वो सारी एक साथ आपके दिमाग में आ जाए तो आप बोलेंगे बंद करो, इसको बंद करो. इसलिए भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा करके, करुणा करके, इसमें ऐसा सिस्टम डाल के आपको व्यवस्थित बना के भेजा है. अपने आप उसके अंदर एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, ऑटो डिलीट ऐसा कुछ है वो, कि जो भी नई चीजें आ जाए तो पुरानी अपने आप डिलीट होती जाए. तो भगवान ने कहा मत्तः स्मृतिर मापोहनम च, मैं स्मृतियों को पैदा करता हूं, मैं ज्ञान को पैदा करता हूं, यादों को पैदा करता हूं, और उसके बाद उसको मिटा भी देता हूं. और ये मिटना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको उतना ही याद आना चाहिए जितना आपको जरूरी है, जरूरी है, और वो जरूरी याद आ जाता है, जितना जरूरी उतना ही आ जाता है. दो स्मृतियां आपस में टकराती हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. एक समय में दो चीजें याद आ जाए, 3-4-5 ऐसी याद आए तो आप मिस हो जाते हैं. आप बोल अरे उसके चक्कर में वो गया, उसके चक्कर में वो गया. इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही इसमें ज्ञान पैदा करता हूं और मैं ही इसको मिटा भी देता हूं. इसलिए कोई चीज कभी आपको याद न आए तो ये गीता का श्लोक याद करो, मत्तः स्मृतिर्मपोहनम च. भगवान ने स्मृति का लोप किया, वो जानबूझ के है और वो वरदान है. उस समय दुखी होने की जरूरत नहीं आया है. अब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए, अब हम कमजोर हो रहे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए. ये याद नहीं आना भी कमजोरी है कि शक्ति है? ये याद नहीं आना ये याद आना भी एक शक्ति है. नहीं तो और याद आना भी एक कमजोरी है. आप उसको किस ढंग से लेना चाहते हैं? आपको बहुत ज्यादा याद आ रही, बहुत ज्यादा याद आ रही, तो ये शक्ति है कि कमजोरी है? ये रोग है कि ये अस्वस्थता है? आपको बहुत ज्यादा याद आ रही तो समझना चाहिए वो बीमारी है. बहुत ज्यादा चीजों की याद आ रही वो तो बीमारी है, बीमारी है. इसलिए आप किस ढंग से लेते हैं उस चीज को, मत्तः स्मृतिर वपोहनम च, ये आपका ज्ञान का उदय और ज्ञान का अस्त, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं. तो जागृत अवस्था है ये ज्ञान की अवस्था, इंद्रियों के साथ बाहर के पदार्थों का संबंध होने पर ज्ञान का उदय होता है. आपके पास आंख है, घटादि बाहर के पदार्थ हैं, दोनों का संबंध और उसके द्वारा बाहर के पदार्थों का ज्ञान हुआ, ये जागृत अवस्था है. और आपकी सारी इंद्रियां जागृत हैं, यहां ज्ञान का उदय है, लेकिन आप सो गए. मैंने आपकी पांचों ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सो गया, ये आपकी सुषुप्त अवस्था है. और इस सुषुप्त अवस्था की अभिमानी जीवात्मा का नाम है प्राज्ञ. प्राज्ञ माने प्रकर्षेण अज्ञ, इति प्राज्ञ. प्राज्ञ माने प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से जो अज्ञानी है उसको बोलते प्राज्ञ. जागृत अवस्था का अभिमानी जीवात्मा भी अज्ञ है लेकिन वो प्राज्ञ नहीं है। जागृत अवस्था में भी अज्ञान है। आप अभी जाग रहे हैं इस समय अज्ञान है कि नहीं? आंख से जो दिखाई दे रहा है उसका अज्ञान नहीं है लेकिन हमारे पीछे क्या है इसका तो अज्ञान है। आप जाग रहे हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसका ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी है लेकिन ज्ञान भी है। इसलिए जागता हुआ जो जीवात्मा है वो प्राज्ञ नहीं है, वो दोनों में ज्ञान भी अज्ञान भी दोनों है। लेकिन सुषुप्त अवस्था का अभिमान्य जो जीवात्मा है वो प्राज्ञ, आप सो रहे हैं तो आप बोलते भी है ना, आप बोलते किंचित न अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जान रहा था, मैं सो रहा था। किंचित न अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जान रहा था। वो कुछ नहीं जान रहा था यही तो उसका प्राज्ञ होना है। आप बहुत डरते हैं छिपकली से लेकिन वो छिपकली आकर के आपके पेट पे बैठ जाए, आराम करने लगे, सो जाए और वो घंटों सो जाए तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना। हो सकता है आप भी उसके शरीर पर हाथ रख दे, पकड़ भी ले, लेकिन आप सो रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है। यही तो है प्राज्ञ। ये जागृत अवस्था ये ज्ञान के उदय की अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था ये ज्ञान के मिटने की अवस्था है। और जब आपका ज्ञान मिट जाता है तो वो ज्ञान आपका ज्ञान में प्रवेश कर जाता है और उस समय आपके अज्ञात संस्कार जग जाते हैं, आपको भी नहीं मालूम। और वो संस्कार जगने के बाद फिर आप स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। आप सोए हैं, शरीर पड़ा हुआ है और आपका अवचेतन मन जगा, उसके अंदर संस्कार थे पूर्व के और उन संस्कारों के द्वारा आप स्वप्न देख रहे हैं। ये तीन अवस्थाएं हुई आपकी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, पृथक उत्पद्यमानानाम, आप ये पृथक पृथक उत्पद्यमान है। ये जागृत भी उत्पद्यमान है, पैदा होती हैं। आप जग गए, आपका जगना पैदा हो गया। आप सो गए तो आपका सोना पैदा हो गया और सो करके आप स्वप्न देख रहे तो आपका स्वप्न पैदा हो गया। ये उत्पद्यमान जागृत स्वप्न और सुषुप्ति है और ये तीनों अवस्थाओं से अलग आत्मा है। इन तीनों से अलग, आप सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं, तो जो स्वप्न देखने वाला वो सोने वाला और वो जागने वाला कौन है? वो एक है कि अलग है? देखो, सोने वाला और जागने वाला और स्वप्न देखने वाला एक है और ये अवस्थाएं तीनों अलग अलग हैं। जागृत स्वप्न नहीं, स्वप्न सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति जागृत नहीं, ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं और इन अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव करने वाला जीवात्मा हम एक हैं। इन अवस्थाओं से पृथक हम हैं, इसलिए जागृति मिटी मिटी। हाँ, आप सो गए तो जागृत अवस्था रही कि नहीं? आप सो गए तो जागृत अवस्था मिट गई और आप जब स्वप्न देख रहे तो उस समय सुषुप्ति अवस्था आएगी नहीं? अरे उस समय सुषुप्ति अवस्था नहीं है, स्वप्न में कहां से है? आप सो गए, आप सो तब स्वप्न देखा आपने तो अलग हो गई, वो सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था अलग हो गई और आप जग गए। और ये उत्पद्यमान है, ये अलग अलग है लेकिन इन तीनों में एक तत्व है जो दृष्टा, तीनों को जानने वाला एक दृष्टा है और वो आत्मा है, आप हैं। और उसको आप जब जान लेंगे ततो न विजुगुप्सते धीरो मत्वा न सोचति। धीर पुरुष उस तत्व को जानकर आत्म तत्व को वो शोक नहीं करता है। ओहो मेरे को नींद नहीं आ रही है, शोक कर रहे हैं, नींद नहीं आने का भी शोक है। अच्छा आप नहीं सो रहे हैं इसलिए दुखी हैं, या नहीं सोने का टेंशन है इसलिए आप दुखी हैं? आदमी सिर दर्द करने से ज्यादा दुखी नहीं है। आदमी ज्यादा दुखी है सिर दर्द क्यों हो रहा है, वो टेंशन में है ना। आदमी को नींद ना आए तो कोई चिंता नहीं, ठीक है, नहीं आया तो नहीं है, जब करो। लेकिन आदमी सोचता है हो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। वो जो तनाव ग्रस्तता है वो आदमी को दुख देती है। इसलिए कहते न सोचती शोक, इसी को शोक बोलते, इसी को शोक बोलते। क्यों? आप जो सोचते हैं ना यही शोक है। जो आप सोच के दुख पैदा करते उसी को शोक बोलते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और ये इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के विषयों के पैदा होने वाली जो संवेदनाएं, इन सारी चीजों को ज्ञानी पुरुष अपने से अलग समझकर न सोचते, वो शोक नहीं करता है। उसको मालूम है ये सारी चीजें ये मेरे में पैदा होने वाली हैं, ये स्थाई नहीं, न जगना स्थाई है और न स्वप्न देखना और न सोना। ततो न विजुप्सते, ततो धीरो मत्वा न सोचती। आचार्य यम कहते धीरो, धीर होना चाहिए इसके लिए, धीर होना चाहिए। आत्मज्ञान को कोई अधीर आदमी नहीं समझ सकते, धैर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य माने धैर्य, जिसे बोले तो हमारी धैर्य बालाजी आ गई। उस दिन गिरीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, धैर्य धैर्य धैर्य, प्रकाश भाई हर बात में धैर्य। आप नहीं आए थे, अच्छा कार्यक्रम हुआ, आपको भी हम हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं। जैसे धैर्य की बात आई तो धैर्य वाला जी आ गए, उनको मालूम था कि मेरी बात होने वाली है अभी, चलो चलो चलो। धीरो मत्वा न सोचती, यही तो धैर्य है, यही तो धैर्य है। आपके अंदर यदि धैर्य ना हो तो आप अधीर हैं, और यदि आप अधीर हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। आंख से कोई चीज दिखाई दी आप विचलित हो गए, ओहो हो। कान से आपने कुछ सुना और आप विचलित हो गए। बहुत बढ़िया रसगुल्ले आपके सामने आए, कई बार ऐसा होता है कि आदमी के सामने भोजन रखा है, हमारे यहां पंगत लगती है। अब वो पुराने जमाने में हम पंगत लगा के बैठ के ऐसे भोजन करते थे, हजारों हजारों लोग एक साथ बैठते हैं, सबको पता लगा है। यहां भी चलता होगा भोजन, अभी तो ये बफेलो सिस्टम लागू है। मैं तो बहुत दिनों तक बफेलो ही बोलता था, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो किसी ने मेरे को बोला कि बफेलो नहीं है ये, भूफे। एक बार घाटकोपर में, गारुड़िया नगर में, वेदांत कुटीर में पहली बार मैंने ये शब्द सुना तो मेरे को बफेलो ही सुनाई दिया। और वहां जब गया मैं तो मैंने कहा भैया सचमुच में नहीं खाऊंगा मैं। बोले क्यों? अरे बोले, मैंने कहा कि ये सब अपने हाथों में से ले रहे हैं, इसे उसी से खा रहे थे वो। कई आदमी तो अपने थाली में से रोटी भी डाल दिया उसने, ज्यादा हो गई थी ना, वो निकाल के रख दिया उसने, फिर रोटी निकाल के रख दी, पूरी ले ली उसने। मैंने कहा ये नहीं भैया, हजारों लोग बैठे हैं। और उसके बाद पहले धोना चलेगा, कूलर चलेगा, गिलास चलेगा, फिर पत्तल चलेंगे, फिर धोने चलेंगे, फिर नमक, नमक से शुरू करते थे। उसके बाद चावल, उसके बाद रोटी, फिर दाल, फिर खीर, हलवा, पूड़ी। और उन हजारों लोगों में एक आदमी भी खाने की कोशिश नहीं करता। ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, एक आदमी भी शुरू नहीं करेगा। वो बोलेगा भैया आ गया आ गया आ गया आ गया। एक आदमी जाके देख के आता है, भैया सबको आ गया क्या, चावल आया? एक आदमी को भी यदि दाल नहीं आई, बोले रुको 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 रुको, इनको दाल नहीं आई, ये तो बहुत बड़ी असभ्यता है, इनको दाल नहीं मिली, और आप भोजन करना शुरू कर दो, बोले रुको। और वो सब लोग रुक जाते और फिर दाल उसको मिली। अब वो मेन आदमी हर हर महादेव बोल देगा, मंत्र बोल देगा भोजन का, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, पूरा मंत्र, ऐसा नहीं बीच में मंत्र हो रहे ऐसा नहीं, पूरा मंत्र हुआ हर हर महादेव, अब शुरू करो भैया। और उसके बाद आपस में बोलते थे लोग, हाँ भैया शुरू करो, भैया शुरू करो, जहां बैठे होते ना भैया शुरू करो, वो बगल वाले को बोल रहा भैया शुरू करो, बस शुरू करो, शुरू करो। धीरता इसी को बोलते हैं धैर्य। आपको भूख है और बहुत बढ़िया भोजन आपके सामने रखा है, उसके बाद भी आप शुरू नहीं कर रहे हैं, और वो बड़ों की बात छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भी, मैंने कई बार बच्चों को देखा है, भूख तो लगी लेकिन शुरू नहीं करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, झूठ मूठ का भोजन करते हैं, आपने कभी देखा होगा। अब वो नियम है सबके साथ भोजन करना है, इसलिए उसको शुरू नहीं करना है, और वो बच्चा क्या करता है फिर अपना मुख भी चलाता रहता है, झूठ मूठ ऐसे करेगा वो, लेकिन वो शुरू नहीं करेगा वो। धीरो धीरो मत्वा न सोचती, ये हमारे आयंद्रिक जो उतावलापन है, उस उतावलेपन पर ये आत्म नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, इसी को तो धैर्य बोलते हैं। आपके सामने नमक आया, नमक ही चाटना शुरू करती है, चटनी आई तो चटनी चाटना शुरू करती है, चावल आया तो चावल ही खाना शुरू कर दिए, ये धैर्य नहीं है, ये अधीरता है। और ऐसा अधीर आदमी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है, इसलिए धैर्य होना चाहिए। आपकी आंखों के सामने कोई चीज आई, थोड़ा धैर्य रखो, कानों से कोई चीज सुनाई दी तो आप तुरंत रिएक्ट हो रहे हैं, धैर्य रखो। आपके सामने खाने की कोई चीज आई, बहुत भूख है, बहुत चटोरापन जरूरी नहीं, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। और ये अभ्यास जन्य है, और ये धीरे 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 ऐसा अभ्यास आप करेंगे, हम आत्मा है, आंख नहीं, कान नहीं, वाणी नहीं, इंद्रियां नहीं, धीरे धीरे अपने से इसको अलग समझ जाए, और अलग समझकर एक विशेष धैर्य की अवस्था में प्रवेश कर जाए, तो उस समय आदमी फिर न सोचती। कितनी भी बड़ी चीजें आपके सामने आ जाए लेकिन आप अधीर नहीं होंगे, इसलिए भगवान ने तो एक शब्द में बोला, प्रणय न व्यथंति च, बोले प्रणय की अवस्था भी आ जाए तो ज्ञानी पुरुष व्यथित नहीं होता है, और प्रलोभन की चीज आने के बाद भी वो प्रलोभित नहीं होता है। ये दोनों चीजें समझना चाहिए। बहुत बड़ी प्रलोभन की चीज आपके सामने आई तो भी उसका मन प्रलोभित नहीं होता है, और बहुत ज्यादा दुख की अवस्था भी जीवन में आ जाए तो भी वो दुखी नहीं होता है। अब उस चीज को आपको जानना है तो अनेकों तरीकों से यहां आचार्य यम बता रहे हैं। वो आत्म तत्व जिसको जानने के बाद ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करता है, उसके जीवन में व्यथाएं नहीं होती हैं, वो अपने आप को शरीर से इंद्रियों से अलग आत्म तत्व को समझकर परम आनंद में डूब जाता है। तो बोले जानने की प्रक्रिया क्या है, वो तत्व क्या है, बोले इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। अब आपको ज्ञान के द्वारा ज्ञान में ले जाने का प्रयत्न कर रही श्रुति, आपको ज्ञान में जाने का मार्ग ज्ञान ही है, आपको एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में ले जाता है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में ले जाता है, एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में ले जाता है। आपको ज्ञान हुआ ये इंद्रियां हैं, आपको जानना है आत्म तत्व को, तो जानने का उपाय क्या है? ये इंद्रियां ही हैं। आप मन से परे हैं, ये मन के द्वारा ही तो जानोगे, आप कहां से जानोगे? मन से ही जानना है कि मैं मन से परे हूं। तो पहले देखो ये हमारे पास सिस्टम क्या है, हमारे पास जानने की चीजें क्या है। हमारे पास जानने की चीजें इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां विषय हैं, और उन विषयों को जानने वाली हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियां, और उस इंद्रियों को भी प्रेरित करने वाला हमारा मन है। कई बार ऐसा होता है कि आंख से तो हम देख रहे हैं और उसके बाद भी हम नहीं देख रहे हैं। यदि हमारा मन कहीं और हो तो हमारी आंख खुली होने के बाद भी हम बाहर के पदार्थों को नहीं जान पाएंगे। आपके भागवत में एक उदाहरण आया हुआ है कि एक कोई बाण बनाने वाला आदमी था, लोहार, वो बना रहा था। उसके सामने से राजा की सवारी गुजर गई, हाथी, घोड़े, हजारों लोग वहां से गुजरे, बहुत ज्यादा कोलाहल था, शब्द थे। निकल जाने के बाद एक व्यक्ति आया और उस बाण बनाने वाले को पूछा, भैया यहां से राजा की सवारी गुजरी है क्या? पहले तो सुना ही नहीं, दो तीन चार बार पूछने पर उसने कहा मेरे को मालूम नहीं है। उस आदमी ने सोचा कि झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे संभव है हजारों लोग तुम्हारे आंखों के सामने गुजरे और तुमको मालूम न पड़े। उन्होंने कहा भाई मैं बाण बनाने में इतना तल्लीन था, वो नोक बनाने में। बोले उस मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, मेरी आंख तो केवल उस नोक पर थी, बाण के नोक पर थी मेरी दृष्टि, और एक जगह पर जब दृष्टि आपकी स्थिर हो जाती है तो दूसरी चीजों का मालूम होना बंद हो जाता है। यह आपके साधना का रहस्य भी इसी में है, आपके सफलता का रहस्य भी इसी में है। आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति केवल आपके उद्देश्य में, आपके जीवन के लक्ष्य में स्थिर हो जाए, फिर आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आपका मन केवल आपके मंत्र पर स्थिर हो गया, आप मंत्र जप कर रहे हैं राम 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 राम, जुबान बनाने वाला था उसकी दृष्टि उस नोक पर स्थिर हो गई, वो बाण का नोक बना रहा था, और जब उसकी दृष्टि वहां पर स्थिर हो गई तो फिर बाकी चीजें मालूम होना बंद हो गई। और जब आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको फिर साइड की चीजें मालूम होना बंद हो जाती हैं, फिर आपकी कमर नहीं दुखती है, फिर आपके घुटनों में दर्द मालूम नहीं पड़ता, संवेदना आदमी खो देता है। आपकी चेतना एक केंद्र में केंद्रित जब हो जाती है तो सारी अन्य संवेदनाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, फिर आपको अन्य चीजें मालूम होना बंद हो जाती हैं। ये समाधि का रहस्य भी इसी में, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, संपूर्ण चित्तवृत्तियों का जब निरोध हो जाता है एक जगह पर, तो आपको भी अन्य चीजें मालूम होना समाप्त हो जाती है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, उस समय आपको आत्मा का पता शुरू हो जाता है। अपना होना कब मालूम पड़ेगा? जब हमारी दृष्टि अन्य में स्थिर ना हो। आंख में दृष्टि स्थिर है तो आंख मालूम पड़ेगी, आंख का विषय मालूम पड़ेगा। कान में हमारी दृष्टि है तो हमें शब्द मालूम पड़ेंगे। यदि हमारी रसना में दृष्टि स्थिर है तो रस मालूम पड़ेगा। नाक में दृष्टि है तो सुगंध दुर्गंध मालूम पड़ेंगे। पांचों इंद्रियों में जब हम हैं तो पांचों विषय मालूम पड़ेंगे। आत्मा कहां से मालूम पड़ेगा? आंख में बैठ के रूप को मालूम होने का उपाय है। हम नाक में बैठ के गंध को मालूम कर सकते हैं, कान में बैठ के शब्द को मालूम कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को मालूम होने का उपाय है। और इंद्रियों से अपने को मन हटाओ, इंद्रियों से मन हटाए, बुद्धि से मन हटाए, और अपनी बुद्धि को अपने में ले आए। और जब हम अपने में स्थिर कर लेते हैं तो उसके बाद अपना होना मालूम पड़ता है। इसलिए बोले इंद्रियों से परे मन है, मन है। यदि मन ना हो ना तो आपको इंद्रियों से बाह्य विषय मालूम नहीं पड़ते हैं। और इंद्रियों से भी, मन से भी परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महातत्व है, महातत्व से परे प्रकृति है, और प्रकृति से जो परे हैं वो आत्मतत्व है। सा काष्ठा सा परागति, माने आप सर्वोच्च हैं, आप सर्वोच्च हैं। ये विषय विषय से उत्कृष्ट इंद्रियां हैं, इसलिए आप रसगुल्ले के लिए अपनी आंख नहीं फोड़ते हैं, रक्षा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, भोजन कीमती है कि आप कीमती हैं? अरे बहुत सुंदर भोजन आपके सामने है, और वो भोजन करने से आप बीमार हो सकते हैं, तो आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपका होना महत्वपूर्ण है, विषय से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको इंद्रियों की रक्षा करना चाहिए। और इंद्रियों से भी मन श्रेष्ठ है, इसलिए मन की रक्षा करनी चाहिए। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। और बुद्धि से भी महतत्व, महतत्व से भी प्रकृति, और प्रकृति से श्रेष्ठ आप आत्मा। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि आप ही केंद्र हैं, इस संसार के केंद्र आप हैं, आप आत्मा हैं। जानो शरीर से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, उसका जो दृष्टा है वो आत्मा है। इसलिए आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और एक बार आप जान लेंगे तो अमृतत्वम गच्छति। मैंने आपको कल भी एक सूत्र बात बताया था, आप शरीर मानोगे तो आप मरोगे, आप अपने आप को शरीर मानोगे तो बूढ़े भी होंगे, क्योंकि बुढ़ापा शरीर का धर्म है, पैदा होना शरीर का धर्म है, मरना शरीर का धर्म है। हम अपने को शरीर समझेंगे तो हम जरूर सोचेंगे कि हम ये मरने वाले हैं, पैदा हुए हैं, और हम आत्मा समझेंगे तो हम जन्म और मृत्यु के भी दृष्टा बनेंगे। कल मेरे को बाद में किसी ने पूछा कि आप अपने जन्म और मृत्यु को नहीं जान सकते हैं। नरेश भाई आप पैदा हुए पक्का? ये आपको कोई कन्फ्यूजन है? नरेंद्र भाई वेद कोई पूछ रहा हूं मैं। राजेश भाई, राजेश भाई मैं आपको पूछना, आप पैदा हुए पक्का है? पक्का, कोई संदेह? लेकिन आप पैदा हुए ये आपको मालूम कैसे पड़ा? आप पैदा हुए ये आपको मालूम कैसे पड़ा? आपने देखा है क्या? आप मरेंगे पक्का? पक्का। लेकिन आप अपने मरने को देखोगे क्या? नहीं। आप भले भी किसी को बोलो वो मर गया मर गया, इसका मतलब अभी मरे नहीं है। आप न अपने जन्म को जानते हैं और न आप अपने मृत्यु को। ये तो केवल श्रोत परंपरा, सुनी हुई बात है। आपने सुना मैं पैदा हुआ, और मैंने सुना मैं मरूंगा। इसलिए श्रुति वेद शास्त्र वेदांत बोलता है कि ये सुनी सुनाई बात है, ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में मत पड़ो, उससे परे जो आत्मा है। बड़ा सुंदर विषय है। 9वां श्लोक हम लोग कल करें।
हरिओम।